और हमारी आदरणीय गीता दीदी जी का एक हाथ की ताली से बहुत 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 प्रेम और सम्मान से स्वागत करती हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले करीब 45 वर्षों से अपने जीवन को समर्पित कर विभिन्न प्रकार की ईश्वरीय सेवाओं में जिनकी मास्टरी है, देश और विदेश में बहुत सारे बाबा के बच्चों को जिनकी ओजस्वी वाणी ने जन्म दिया है, और देश विदेश में अपने पालना के स्वरूप से ज्ञान रत्नों को जिन्होंने पाला है, प्यारे बाप दादा से आपको ऐसी दिव्य वाणी का वरदान मिला हुआ है। मधुबन बेहद घर में रहकर कॉन्फ्रेंसेस और शिविरों में आपका विशेष योगदान रहता है। अन्य स्थानों पर भी बाबा के जो विशेष संदेश के कार्यक्रम हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिजनेस और इंडस्ट्री विंग में आप मधुबन कोऑर्डिनेटर के नाते बहुत सक्रिय रूप से कार्य कारोबार कर रहे हैं, और विशेष हमारी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी आप नियमित टीचर हैं। मैं आपसे आज अनुरोध करती हूँ कि हमारी आदरणीय दादी जानकी जी बार बार मैं कौन शब्द का प्रयोग करती है, तो मैं कौन इस स्वस्थिति की एक गहरी महसूसता की ओर हमें आज हमारी गीता दीदी ले जाएंगी। आज का विषय ही हमारा है स्वस्थिति की
ओम शांति। अच्छा लग रहा है मधुबन में, इस बार मौका मिला है मधुबन में रहने का। बाकी तो विजिट करते हैं, है ना, पर रहने का मौका नहीं होता है। हरेक को अपने जीवन में और विशेषकर हम सब आध्यात्मिक लोगों को अब हम केवल सांसारिक नहीं हैं, हम केवल व्यावहारिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक है। परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। हम सबके जीवन में तपस्या का महत्व है। हर धर्म में आप देखिए तपस्या का महत्व है। हिंदू भाई बहने चातुर्मास में, श्रावण मास में विशेष आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करते, जैनीज पर्युषण मास में खास तप करते, मुस्लिम भाई बहने रमजान रखते, है ना, रमजान के मास में रोजा रखते हैं। इवन क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए अभी ही गुड फ्राइडे और ईस्टर की जो 1 वीक का समय है वो उन लोगों के लिए तप का समय होता है। हमारा तो पूरा जीवन ही संगम युग में तपस्या का जीवन है। निमित्त दुनिया में हैं, लेकिन हम हैं योगी तपस्वी। इसी लक्ष्य से हम ज्ञान में चल रहे हैं, भक्ति में स्वलक्षी दृष्टिकोण नहीं होता है। महत्व समझते हैं, भगवान को याद करना है, कुछ धर्म ध्यान करना है, पर मुझे क्या बनना है, मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है, ये स्पष्ट नहीं। हमारा ये रूहानी जीवन शुरू ही होता है इसी पाठ से। कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। दुनिया में कैरियर के हिसाब से फील्ड चुनते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, व्यापारी बनना है, पर एक्चुअली वो कैरियर है। क्या करना है वो है, मुझे क्या बनना है वो तो कोई समझ ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए जीवन के लिए कोई लक्ष्य नहीं। बाबा ने सबसे पहले पहला पाठ जो पढ़ाया उसी पाठ से पूरा जीवन बदल गया। हमें समझ में आने लगा कि हम स्वयं ही अपने जीवन के केंद्र बिंदु हैं। मुझसे जीवन है, मैं हूं शरीर में तो जीवन है, और मैं निकल जाऊं तो जीवन समाप्त है। तो सबसे बड़ी महसूसता की बात यही है कि जीवन का केंद्र बिंदु हम स्वयं हैं। मैं खुद हूं, और प्रथम पाठ से ही बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि मैं एक आत्मा हूं, शक्ति हूं, शरीर तत्व है, मिट्टी है, तो पहले जो जीवन बॉडी कॉन्शियस था और जिसके कारण बुद्धि योग शरीर में ही था, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, सोने में, घूमने में, हमारा सारा समय शक्ति, धन साधन, शरीर के पीछे खर्च होता है। लेकिन ये एक अवेयरनेस जो बाबा ने हमारे में लाई, पहला पाठ करने से ही जो जागृति आत्मा में आ गई कि हम आत्मा हैं, शक्ति हैं, शरीर से अलग है, तो बुद्धि योग देह से निकलकर स्व में स्थित हो गए। अब जो भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो दृष्टिकोण चेंज हो गया, खाने के लिए जीते थे और अब जीने के लिए खाना है, लक्ष्य बदल गया, अवेयरनेस आ गई, क्योंकि आत्मा हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करती है, हर क्षण शरीर की जरूरत भी है, और हर क्षण शरीर भान से न्यारा भी रहना, ऐसे नहीं है कि खाना नहीं है, ऐसे नहीं है कि सोना नहीं। इसलिए गीता में कहा है कि अनाहारी भी नहीं, अति आहारी भी नहीं, खाएं ही नहीं वो भी देहे, खाऊं खाऊं होता रहे वो भी देहे। मिताहारी, जो जरूरी है, क्योंकि बॉडी मेंटेन भी करना है और बॉडी कॉन्शियस भी नहीं बनना है, इसलिए बाबा ने सात्विक भोजन कर दिया। सात्विक शुद्ध शाकाहारी, ताकि बॉडी कॉन्शियस न बने। और बाबा को याद कर, बाबा को भोग लगाकर फिर खाते हैं, ताकि भोजन का प्रभाव न पड़े। भाई रसगुल्ला आ गए? नहीं, पहले भोग लगाना है। डिटैचमेंट, बीच में योग आने से भोजन का आकर्षण कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है कि बाबा को भोग लगाना। अल्टीमेट अन्न शुद्धि भी इसलिए है, भोग लगाना, बाबा को याद कर स्वीकार करना, ये भी इसलिए है कि आकर्षण में न आए, बॉडी कॉन्शियस न बने, क्योंकि केवल आत्मा के ज्ञान मात्र से आत्मभिमानी नहीं बन जाते। ज्ञान तो पहले ही दिन मिल गया, पर आत्मभिमानी बनने के लिए जीवन भर अभ्यास चाहिए। क्योंकि अनेक जन्मों से बॉडी कॉन्शियस बनने का अभ्यास है, तो उतना ही अभ्यास सोल कॉन्शियस बनने का चाहिए। क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये नींव है। अगर आत्मभिमानी स्थिति की साधना कच्ची रह जाती है तो वृत्ति संस्कार बदलते नहीं है पूरे। पूरा चेंज नहीं होता है। इसलिए सादा, सरल और सात्विक जीवन बनाए। क्यों बाबा ने ये यूनिफॉर्म पहना है? यज्ञ की शुरुआत में जो भी समर्पित हुए, कान में, नाक में, गले में कुछ पहनते नहीं थे, तो कईयों ने बाबा से पूछा क्यों आप इनको कुछ पहनवाते नहीं। बाबा ने कहा ये रॉयल रस्सियां हैं, ये रॉयल रस्सियां, गाय भैंस बैल को वश करना है तो क्या करते, नाक से, कान से, गले से रस्सी डाल के रस्सी से कंट्रोल करते। तो ये रॉयल रस्सियां हैं, इसको अपनाने से बॉडी कॉन्शियसनेस पक्का हो जाता है। मैं स्त्री हूं, ये भान पक्का हो जाता है। समय तो यज्ञ की नींव थी और समर्पित थे ना सारे। जिस लक्ष्य से बाबा ने यज्ञ रचा, संपूर्ण निर्विकारी बनना, देवता बनाना, माना जो भी उसकी महिमा हम गाते हैं देवता की, उसका फाउंडेशन और फाउंडेशन की वो आत्माएं दादियां बताती है ना कि 7 दिन का कोर्स माना, एक लेसन दिया और कोई भी देहधारी याद आए तो फिर से बोले ना, कितना बाबा ने फाउंडेशन पक्का डाला। मैं शुद्ध आत्मा हूं, घंटों उस नशे में बैठे रहते। अपने ओरिजिनल स्वरूप का एहसास, अब समय अनुसार आप सबका डबल रोल है, लौकिक और अलौकिक दोनों। इसमें जितना जरूरी है रोल के हिसाब से आप पहनते हैं, पर इच्छा नहीं है ना, ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं। एक है इच्छा, ये पहनूं वो पहनूं ऐसा पहनूं, वो बॉडी कॉन्शियस बनाता है, पर अब इच्छा नहीं, समझ है, सिर्फ पार्ट है लौकिक का, इसलिए प्ले करते तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरों को पहना हुआ देखकर फिर देखने की इच्छा नहीं होती है, बुद्धि उसमें नहीं जाती, ये कहां से आप लाए, कैसे बनाए, नहीं, क्योंकि शौक नहीं, आकर्षण नहीं, क्योंकि लक्ष्य क्या है अब कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहना। वो स्थिति है तो न्यारापन, तो रूहानियत है, तो बाबा से कनेक्शन। सारी आध्यात्मिक प्रगति का आधार स्थिति है, मेरी स्वस्थिति। जो मेरा अपना वास्तविक असली सत्य शुद्ध पवित्र दिव्य स्वरूप है, उसमें मुझे स्थित हो। भक्ति में मान्यता गलत है, वो समझते हैं कि आदतें संस्कार स्वभाव जाते नहीं हैं, मरेंगे साथ जाएगा, ऐसे समझते हैं। रस्सी जलेगी पर बल नहीं छूटेंगे, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सो टेढ़ी, ऐसा कहते हैं ना, उसको ओरिजिनलिटी समझते कि आदतें नहीं जाएगी, इनका स्वभाव नहीं सुधरेगा, ये जो एक दो के लिए या खुद के लिए बोलते हैं, क्योंकि समझते हैं कि यही उनकी असलियत है। हमें बाबा ने अपना वास्तविक परिचय देकर जगाया, महसूस कराया कि तुम्हारी असलियत क्या है, कि तुम सत्य हो, पवित्र हो, शांत हो, चैतन्य हो। इसको बार बार स्मृति में लाना और महसूस कर, तो हमें ये लक्ष्य बनता है, हिम्मत रहती है कि हम बदल सकते। बाबा की अभी दो तीन मास के अंदर ही एक मुरली थी जिसमें बाबा ने बताया था एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, ये बात बताई थी। हाँ, पवित्रता के संदर्भ में। और बाबा ने कहा था कि भले पास क्लास में है, थर्टी 33% पास क्लास जितना ही पवित्रता की धारणा है। और कितना सिंपल बात बाबा ने बताई, पर कितनी पावरफुल, कि अगर फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन क्लास में जाना हो तो बार बार यही संकल्प रिवाइज करना है कि आदि अनादि में पवित्र आत्मा। तो कोई भी अपवित्रता, विकार, कमजोरी का अंश भी हमें पसंद नहीं आएगा। तो हमें ये महत्व महसूस हो कि इस आध्यात्मिक जीवन में हमारी अपनी स्थिति ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बाबा दे रहे हैं, वो तो है ही दाता, निरंतर दे रहा है। पर वो लेकर के अपने आप को मैंने कितना बनाया, अल्टीमेट मुझात्मा के साथ स्थिति ही जाएगी और स्थिति बनने से वो बाहर स्वरूप में अनुभव में आएगी। व्यक्ति तो वो ही होता है ना, पर अंदर की आत्मा स्थिति जैसी होती है वैसा वो दिखाई देता है। कई बार हम कुछ कहते नहीं है पर पता चलता है ना चेहरे से, क्यों क्या है आज, कोई प्रॉब्लम है, कोई चिंता है, क्या बात है, चेहरे से पता चला ना, क्योंकि अंदर स्थिति क्या है, बाबा कहते हैं ना अंत में एक एक से बाप दिखाई देगा, आप में बाप दिखाई देगा। तो वो कैसे दिखाई देगा, जब अंदर से चेहरा तो अंत तक यही रहेगा ना, जो इस अंतिम जन्म के शरीर का है, पर वो दिखाई ऐसा देगा जैसी मुझ आत्मा की अंदर की स्थिति हो। तो एक तो मुझे अपनी वास्तविकता, अभी जो मेरी स्थिति है, मुझे अपना चित्र स्पष्ट होना चाहिए। कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी कमजोरियां हैं, मैं कहां कमजोर हूं, मेरा अपना वीक पॉइंट मुझे पता चलना चाहिए। जैसे हरेक को शरीर का नॉलेज है ना अपना, कि ये खाने से मुझे ऐसा हो जाता है, ऐसे वायुमंडल में जाने से मुझे ये हो जाता है, हरेक को अपने शरीर की नॉलेज है। मुझे अपनी आत्म स्थिति का चित्र स्पष्ट होना चाहिए। कि मैं कहां हूं, नित्य पढ़ाई हो रही है, योग अभ्यास हो रहा है, सेवा कर रहे हैं, संगठन में चल रहे हैं, धारणाओं में हैं, पर मैं कहां हूं, किस में कैसा, अपनी वास्तविकता जब महसूस होती है तो हमें कहां क्या सेफ्टी रखनी है, ध्यान देना है, किस प्रकार का पुरुषार्थ ज्यादा करने की जरूरत है, इसका हमें पता चलता है। बाबा की मुरली तो हम सब बच्चों की स्थिति को देख करके बाबा चलाते, मतलब मुरली तो जनरल मेडिकल स्टोर के समान है, सबकी दवाइयां हैं, पर पर्टिकुलर मेरी बीमारी कौन सी, एक के लिए गुस्सा कंट्रोल करना मेहनत की बात हो सकती, पर दूसरे के लिए वो चीज ही नहीं होगी, उनका नेचर ही इतना शांत होगा कि उसको वो बात, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं ना नब्ज देखकर ज्ञान दो, उसकी रग मेरे हाथ में है, ऐसे कहते हैं, उसकी दुखती नस मेरे हाथ में है, ऐसे कहते हैं ना लौकिक में, पर खुद की है ना, मुझे मेरी होनी चाहिए, कि जो कुछ बाबा कहते हैं, जो लक्ष्य बाबा ने दिया है समान बनने का, उस हिसाब से अभी मेरी स्थिति क्या है और मैं कहां, कई बार जो हम हैं उससे ज्यादा अपने आप को समझ लेते तो हमें ज्यादा अपेक्षाएं सबसे होती। मुझे भी ये चांस मिलना चाहिए, मुझे भी ये मान मिलना चाहिए। जो हम हैं उससे ज्यादा अपने आप को समझ लेते हैं तो हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं बढ़ जाती है। और जो योग्य आत्मा को जब वो चीजें मिलती हैं तो भी हमें ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा। तो ये बहुत एक्यूरेट एस्टिमेट अपने आप को करना है कि हम क्या है। कहते हैं पास्ट प्रेजेंट सॉफ्ट हार्ड के बीच में नाउ, अभी मैं कहां और किस स्थिति में। जैसे शरीर के लिए राइट डायग्नाइज होने के बाद ही ट्रीटमेंट कर पाते, अगर डायग्नाइज ठीक नहीं है तो ट्रीटमेंट सही रीति से असर नहीं करते। यहां हमें खुद ही खुद को डायग्नाइज कर, क्योंकि अब बहुत आगे की पढ़ाई हम पढ़ रहे, शुरुआत में ब्राह्मण परिवार निमित्त बहने हमें गाइड करते थे, बताते थे। जब हमने जीवन की बाह्य मोटी बातें बदलने की थी तो हमें सबकी मदद मिल सकती थी, है ना। विज्ञान में आने के बाद मान लो मैं बाहर का खाती हूं या फिल्मों में जाती हूं तो ईश्वरीय परिवार रोकेगा, टोकेगा, समझाएगा, गुस्सा करेंगे तो ईश्वरीय परिवार निमित्त बहने हमें समझाएगी। पर हम तो उसको क्रॉस कर गए ना, अभी तो बहुत आगे के पुरुषार्थ की बात। समय के हिसाब से भी, और हम बच्चे कोई 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से और आगे, अब बाह्य स्ट्रक्चर फिक्स हो गए, वो सही हो गए। अब पुरुषार्थ कौन सा है हमारा, अंदर में जो सूक्ष्म विचार है, इच्छाएं हैं, रुचि है, इंटरेस्ट, सूक्ष्म भाव है, भावनाएं हैं, वाइब्रेशंस है, आदतें हैं, ये जो हमारा अंदर का चित्र है, अब उसको हमें एक्यूरेट बाप समान माना, सत्य और शुद्ध बनाना। इसलिए उस परिवर्तन के लिए हमारी अपनी जागृति महसूसता ही ज्यादा काम कर। बाहर से तो हम हंस है ना, पर मुझे अंदर से अपनी वृत्ति स्मृति इन सब से अपने आप को देखना, कि मैं कहां हूं। और जब इतना स्व पर अटेंशन है, तो हमें और बातों में जाने की फुर्सत ही नहीं रहेगी और उसमें रुचि भी नहीं रहेगी। समय अनुसार अपना ही होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। जो इस बार पूरी सीजन में बाबा ने हमें महसूस कराया कि ये समय कौन सा है, लास्ट दो तीन मुरली संगम युग की पूरी महिमा और बाबा से मिलन का महत्व, ये दोनों चीजें बताकर किस अनुभूति में हमें रहना है, यही तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। तो खुद का चित्र खुद की बुद्धि में स्पष्ट, और ये जितनी गहरी महसूसता उतना सूक्ष्म पुरुषार्थी हम बन सके। नहीं तो हम समझते हैं कि हम ठीक है ना, हम नियमों में हैं, धारणा में हैं, नित्य क्लास करते हैं, सेवा करते हैं, पवित्र हैं, योगी हैं, ओवरऑल हम अच्छे ही हैं ना? कईयों को होता है कि अब क्या पुरुषार्थ कर रहे, कर लिया ना, धारणाएं भी हो गई है, अब क्या करना है। पर जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो पता चलता है। बाबा ने एक भोग के संदेश में बताया कि एक बड़ा स्टेज था और पर्दा बंद था। तो संदेश जी ने कहा, बाबा अंदर क्या है? तो देखा सब ब्राह्मण देवता ड्रेस देवता स्वरूप में सजकर बैठे थे। तो बोला, बाबा पर्दा खोल दो ना। सब तैयार देवता स्वरूप में बैठे। बाबा ने कहा, नहीं, नजदीक जाकर ध्यान से देखो। जब देखा तो किसी का कान ऐसे हिल रहा था, किसी का होठ ऐसे से हो रहा था, किसी का नाक ऐसे हो रहा था, किसी की आंख ऐसे हो रही। तो बोला, बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा, तभी तो पर्दा नहीं खोल रहा कि कोई एक कर्मेंद्रिय अभी भी चंचल है, किसी का वाणी पर संयम नहीं है, किसी का स्वाद जीव हिल रही है, सुनने का रस है, देखने का रस है, कहीं न कहीं अटके हैं। अभी एक हफ्ते के अंदर ही मुरली थी ना, कोई ऐसा शौक है जिसके कारण अटक पड़ती है। बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ मंजिल पर पहुंचने। और लास्ट सेटिस्फेक्शन हमारी अपनी स्थिति से ही आना है। दुनिया भर का हमने कल्याण किया होगा, पर खुद का सुधार और उद्धार नहीं किया होगा तो संतुष्टता नहीं आएगी। बेशक मैंने बहुत सेवा की, पर खुद को ही भूल गए, खुद का ही कल्याण नहीं। बाबा कहते हैं सेवा रह जाएगी, बाबा किसी को भी निमित्त बना करके करा देगा, पर स्थिति बनाना रह जाएगा तो वो दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता। खुद की स्थिति खुद को ही बनानी होती। और खुद में स्थित होने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें अपनी स्थिति में ही इतना आनंद आएगा बात आई नहीं और सॉल्यूशन बुद्धि में टच हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में एक दोस्त से मिलते हो तो भी स्थिति में स्थित होकर मिलो। हमारी हर किसी से मुलाकात मिलन स्पिरिचुअलाइज्ड करना है, उससे आध्यात्मिक बनाना है। कॉमन मिलना ना, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लौकिक हो या अलौकिक हो, मुझे स्व में स्थित होकर हर आत्मा से मिलना है। वो देह से न्यारापन और स्वस्थिति की सत्यता और शुद्धता यही तो अलौकिक बनाती। अलौकिकता दिव्यता आती किससे है? इसी अभ्यास से। बाबा जितने भी स्वमान बताते हैं, टाइटल देते हैं, सिर्फ देने के लिए देते हैं ऐसा नहीं है। ये रियलिटी है। अपने आप को वो महसूस करना, अपने आप फिर क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे अब क्या करना। स्थिति में स्थित होकर जितनी मुझ आत्मा की आत्मा स्थिति न्यारी है, प्यारी है, शक्तिशाली है, ऊंची है, महान है, मेरे हर संकल्प वाणी कर्म व्यवहार ऑटोमेटिक यथार्थ। वो ऑटोमेटिक रिजल्ट है। कहते हैं ना आजकल मशीन में आटा डालते हैं या गेहूं ही डायरेक्ट डालते हैं और आइटम पैक होके बनकर तैयार निकलती है। बाबा ने हमारी बुद्धि में सद्ज्ञान के विचार बोए। बस एक एक सत्य विचार एक बीज के समान है। ज्ञान का एक एक सत्य बीज के समान। उसको धारण करने से ऑटोमेटिक ये परिवर्तन ऊंचाई अपने आप आने लगती। तो हमारी पढ़ाई और हमारा पुरुषार्थ यथार्थ चल रहा है उसकी परख ही ये है कि वो ज्ञान गुणों में शक्तियों में धारण होता जाए, कन्वर्ट होता जाए। इवन बाबा कहते हैं जब भी बाबा के सामने आकर बैठते हो, क्लास में आते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं ना, स्थिति में स्थित होकर बैठो, आत्माभिमानी बनकर बैठो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। ये स्वचिंतन, स्वदर्शन, आध्यात्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। वो हमारी नींव है। बाबा ने ज्ञान का दर्पण दिया है, पर देखेंगे तो पता चलेगा ना कहां क्या ठीक करना है। आईने में क्यों बार बार देखते रहते, तो पता चलता है चेहरे में कहां क्या ठीक करना है। ऐसे बाबा ने दर्पण दिया, ज्ञान दर्पण, हर ऊंचाई बाबा ने बताई। जितना उस अनुसार देखते हैं तो हमें किसी से पूछने की या किसी के कहने की आवश्यकता ही नहीं, हमें खुद को ही महसूस होगा कि मुझे कहां क्या खुद को ठीक करना है। तो ये मौका है बाबा कहते हैं, बाबा ने मधुबन बनाया है, साइलेंस में बैठो, अकेले अकेले चक्कर लगाओ, चित्र के आगे आके बैठ जाओ और देखो अपने आप। है ना, अक्सर हमें कई बार ये अफसोस रह जाता है कि शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिलता। इवन सेंटर में रहते हैं तो भी होता है ना, बाबा की सेवा, परिवार, कारोबार इतना है कि खुद के लिए बैठ ही नहीं पाते। दिल करता है एकांत में बैठ जाएं, दो दिन सब बातों से फारिग हो जाएं, तो ये चांस है ना, ये मौका है। खुद साइलेंस में रहकर गहराई से सोचना इस विषय पर, खुद में ही बहुत अच्छा आनंद महसूस होता है, न्यारापन और प्यारापन अपने आप में महसूस होता है। फिर अपने आप जो लोग आपसे मिलेंगे उनको भी अनुभव में आएगा।